लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वयोवृद्ध लोग परिवारों और क्रिस्तीय समुदायों से समर्थन प्राप्त कर अपनी प्रज्ञा और अनुभव का उपयोग विश्वास के प्रसार एवं नवीन पीढ़ियों के प्रशिक्षण हेतु करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओ, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं एवं अड़चनों को जीवन से दूर रखें। प्रभु कब तक, प्रभु कब तक, क्या तू सदा के लिए छिप गया? क्या तेरा क्रोध आग की तरह जलता रहेगा? याद करके कितना अल्पकालीन है मेरा जीवन, कितने नश्वर हैं तेरे बनाए हुए मनुष्य। ऐसा कौन मनुष्य है जो तेरी मृत्यु देखे बिना जीवित रहेगा, जो अधोलोक से अपने प्राण छुड़ा सकेगा? श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 89वें भजन के 48वें और 49वें पदों में निहित शब्द। इन पदों की व्याख्या हमने 23 नवंबर के प्रसारण में की थी। श्रोताओं को स्मरण दिला दें कि 89वां भजन गहन निराशा के क्षणों में रचा गया भजन है। भजनकार ने यह पुकार जब लगाई जब दाऊद के वंश को उत्पीड़ित किया जा रहा था। प्रभु को संबोधित कर भजनकार कहता है कि प्रभु ने दाऊद का वैभव छीन लिया और अपनी संविदा को भुला दिया है। वस्तुतः प्रभु ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूले थे, किंतु जिन परिस्थितियों से उस समय लोग गुजर रहे थे वह इतनी असहनीय थी कि लोगों को लगने लगा था कि ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा को ही भूल बैठे थे। इस तथ्य पर हम दृष्टिपात कर चुके हैं कि हम पर भी जब संकट आता है तब हम अपनी असफलताओं के लिए ईश्वर को ही जिम्मेदार मानने लग जाते हैं, जबकि जो कुछ हमारे साथ होता है वह सब हमारे अपने निर्णयों और हमारे अपने विकल्पों का परिणाम होता है। 47 से लेकर 49 तक के पदों में भजनकार अपनी याचना में प्रभु से प्रश्न कर पूछता है कि कब तक प्रभु उसकी सुधि नहीं लेंगे, कब तक वह उत्पीड़ित होता रहेगा। वह याद दिलाता है कि मनुष्य का जीवन अल्पकालीन है और यदि यह जीवन दुख कष्टों में ही व्यतीत हो गया तो वह ईश्वर की महिमा को कैसे जान पाएगा। वह जीवन की क्षण भंगुरता और समय की कमी की याद दिलाकर ईश्वर से अनुरोध करता है कि प्रभु उसकी प्रार्थना तुरंत सुने तथा उसे उसके शत्रुओं के हाथों से छुड़ाएं। कहता है, ऐसा कौन मनुष्य है जो तेरी मृत्यु देखे बिना जीवित रहेगा, जो अधोलोक से अपने प्राण छुड़ा सकेगा। श्रोताओ, सच ही तो है, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, किसी के पास वह शक्ति नहीं है जो अपने जीवन को मृत्यु और कब्र से बचा ले। हम मनुष्य प्रायः भूल जाते हैं कि हमारा जीवन पूर्णतः ईश्वर पर निर्भर है। इस पद में भी भजनकार ने यही याद दिलाया है कि मनुष्य अपने आप में कुछ भी नहीं है, प्रभु की कृपा और अनुकंपा ही उसके जीवन को अर्थ प्रदान करती है। श्रोताओ, नवासीवें भजन के अंतिम चार पद में इसी विचार को अभिव्यक्ति प्रदान कर भजनकार आगे कहता है, प्रभु कहाँ है पूर्व काल के तेरे उपकार, तूने दाऊद के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता की शपथ खाई, प्रभु अपने अपमानित सेवकों की सुध ले, उस प्रजा की सुध ले जो मुझे सौंपी गई है, प्रभु तेरे शत्रुओं ने उनकी निंदा की, उन्होंने तेरे अभिषिक्त का पग पग पर अपमान किया, प्रभु सदा सर्वदा धन्य है। इन पदों से स्पष्ट है कि भजनकार इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि ईश्वर ने अपनी प्रजा का परित्याग कर दिया था। इसीलिए बारंबार सवाल करता है, प्रभु कहाँ है पूर्व काल के तेरे उपकार। वह याद दिलाता है कि प्रभु ईश्वर ने अपने सेवकों से सत्य प्रतिज्ञता की शपथ खाई है और ईश्वर का वचन कभी टल नहीं सकता। कहता है कि यदि ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता समाप्त हो जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा और जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। आधुनिक युग के लोग भी यह नहीं कह सकते कि ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा को भुला बैठे हैं, क्योंकि नवीन व्यवस्थान के प्रकाश में नवासीवें भजन के ये पद हमें प्रभु येसु ख्रीस्त का स्मरण दिलाते हैं, जिन्हें ईश्वर के इकलौते पुत्र होते हुए भी क्रूस पर दुख भोगना पड़ा था, किंतु जिनके क्रूस स्मरण और पुनरुत्थान ने हम सबके लिए मुक्ति के द्वार खोल दिए। इसी के संदर्भ में भजनकार कहता है, उन्होंने तेरे अभिषिक्त का पग पग पर अपमान किया। नवासीवें भजन के अंतिम पद में भक्त समुदाय प्रार्थना करता है, प्रभु सर्वदा धन्य है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, नवासीवें भजन में यह स्मरण दिलाया गया है कि सभी मनुष्य, भले ही उनके पास अपार संपत्ति, सांसारिक धन दौलत ही क्यों न हो, सबके सब नश्वर हैं। सबको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब तक जीवन है, मनुष्य भले कर्म करे, बुराई से दूर रहे, सब कुछ के लिए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देता रहे और भजनकार की तरह कहता रहे, प्रभु सदा सर्वदा धन्य है।
ओम धन्य पिता ईश्वर, हे प्रभु दिल में आन बसो।
ओम धन्य पिता ईश्वर, हे प्रभु दिल में आन बसो।
जय 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 जगदीश हे, जय 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 जगदीश हे,
जय 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 जगदीश हे, जय जय
आगे स्तोत्र ग्रंथ के 90वें भजन में मनुष्य की नश्वरता पर ध्यान आकर्षित कराया गया है। 17 पदों वाला 90वां भजन ईश भक्त मूसा की प्रार्थना है। इस स्थल पर श्रोताओं को याद दिला दें कि 90वां भजन स्तोत्र ग्रंथ का एकमात्र भजन है जिसमें मूसा की प्रार्थना निहित है, क्योंकि बाइबल आचार्यों के अनुसार संपूर्ण धर्म तत्व विज्ञान और ईश शास्त्र का सूत्रपात निर्गमन ग्रंथ के 3रे अध्याय में निहित 1 से लेकर 14 तक के पदों से शुरू हुआ। इन्हीं पदों में प्रभु ईश्वर स्वतः को प्रकट करते हैं। इन्हीं पदों में प्रभु ईश्वर मूसा से कहते हैं, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, और फिर मैंने तुमको भेजा है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। और झाड़ी में से मूसा को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ती है जिसमें प्रभु ईश्वर कहते हैं, मेरा नाम सत है, इसराइलियों से कहो कि जिसका नाम सत है उसी ने मुझे भेजा है। इस प्रकार श्रोताओं, स्तोत्र ग्रंथ का 90वां भजन मूसा की प्रार्थना है जिसमें मनुष्य प्रभु से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त करता तथा उनके प्रति आज्ञाकारिता प्रेम और निष्ठा का प्रण करता है। इस भजन के प्रथम दो पदों के पाठ से हम आज पवित्र धर्मग्रंथ बाइबिलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त करना चाहेंगे, जो इस प्रकार हैं। प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों की सृष्टि के पहले, पृथ्वी और संसार की उत्पत्ति से पहले, तू ही अनादि अनंत ईश्वर है।
सुहावन धन्य है।